तो जब सितारे निकल आते हैं और परिंदे सारे सोने जाते हैं, कर तूने है वाणी नन्हे बच्चों की, रात भर करने पागल सब बीमारों की, हमने है जो पड़े देवा और यकीन,
अदाब इस प्यारे साथियों, मुखलिस दोस्तों, मेरे काबिले एहतराम बुजुर्गों, नटखट बच्चों, प्यारी बहनों और भाइयों, मैं हूं आपकी मेजबान इरम इमरान और आप समात फरमा रहे हैं इस वक्त रेडियो वेरितास की उर्दू सर्विस। दोस्तों, हमारी आवाज़ को दिल से कबूल करने का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे प्रोग्रामों को पसंद करने का बहुत शुक्रिया और जी हाँ, आपके प्यार भरे पैगाम अरसाल करने का भी शुक्रिया। सामईन, आज के प्रोग्राम सुनने से कबल समात फरमा लीजिए हमारे पता जात। दोस्तों, अगर आप हमारे प्रोग्रामों को ऑनलाइन सुनना चाहते हैं तो विजिट कीजिए urdu-veritas-asia.org और दोस्तों, अगर आप फेसबुक पर हमारे साथ जुड़े हैं तो प्रोग्राम सुनिए और हमारा पेज भी जरूर लाइक कीजिए जो कि है आरवीए उर्दू सर्विस के नाम से। प्रोग्राम सुनिए और जी हाँ, इसे लाइक करना और इन पर कमेंट करना हरगिज़ मत भूलिएगा। यूट्यूब पर हमारा चैनल है आरवीए उर्दू सर्विस के नाम से, प्रोग्राम यूट्यूब पर भी आप सुन सकते हैं। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो हमारे दोस्त ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हैं, हमें आरवीए उर्दू सर्विस से फॉलो कर सकते हैं और प्रोग्रामों से लुत्फंदोज हो सकते हैं। दोस्तों, आज जुम्मा है और आज के रोज आप प्रोग्राम समाप्त फरमा सकेंगे नगमा सहर और रहनुमा सितारे। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये प्रोग्राम फादर कैसर फेरोज की जेर निगरानी तैयार किए गए हैं। तो आइए समाप्त फरमाइए ये प्रोग्राम। हमारे खुदावन यीशु की अंजील मुकद्दस मरकज के मुताबिक उसका 12वां बाब 35 से 37 आयत है। एक दिन यीशु हैकल में तालीम देते वक्त खिताब करते हुए कहने लगा कि फकी क्यों कर कहते हैं कि अलमसी दाऊद का बेटा है। दाऊद ने खुद ही रूल कुदुस से कहा है कि खुदावन ने मेरे खुदावन से कहा कि मेरे दाएं बैठ जब तक कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी न कर दूं। दाऊद तो खुद उसे खुदावन कहता है, फिर वो उसका बेटा क्यों कर है, और बड़ा हजूम खुशी से उसकी सुनता था। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, फकीह हमेशा से यही तालीम देते आए थे कि मसीह मौत सुलबी लिहाज से दाऊद की नस्ल से होगा। अगरचे ये हकीकत है मगर पूरी हकीकत नहीं। चुनाचे जितने लोग खुदावन यीशु के पास हैकल के सहन में जमा थे, उसने उनके सामने एक मुश्किल पेश की कि जबूर 110 में दाऊद आने वाले मसीह मौत का जिक्र करते हुए उसे मेरे खुदावन कहता है, ये कैसे मुमकिन है। मसीह मौत बायक वक्त दाऊद का बेटा और दाऊद का खुदावन कैसे हो सकता है। हमारे लिए तो जवाब साफ और वाज़ह है, मसीह मौत बशर और खुदा दोनों है। इतने दाऊद होने के लिहाज से वो बशर है और उसका खुदावन होने के लिहाज से वो खुदा है। आम लोग खुशी से उसकी सुनते थे, लगता है कि वो हकीकत को मानने और कबूल करने को तैयार थे, हालांकि वो उसे पूरी तरह समझते भी नहीं थे। مگر یہاں فقیوں اور فریسیوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا ہے، ان کی خاموشی بدشگنی کی علامت ہے۔
ابتداس قادر مطلق کے نام سے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، پروگرام کا آغاز اس امید کے ساتھ کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ عزیز ساتھیوں، محسنوں اور قدردانوں، یہ ریڈیو ویریتاس ایشیا کی اردو سروس ہے. میں ہوں آپ کی میزبان ثنا جارج اور پیش خدمت ہے پروگرام رہنما ستارے. آج کے اس پروگرام میں ہم اپنے ننھے ساتھیوں کے لیے لے کر آئے ہیں ایسا پروگرام جس کا ہمیشہ سے انہیں انتظار رہتا ہے. آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک دلچسپ سی کہانی جو کہ آپ کے لیے سبق آموز ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ دیں گے آپ کو ڈھیر ساری معلومات اور لیں گے جی آپ کی ذہانت کا بھی امتحان. تو اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں جس کا عنوان ہے فرما برداری کا عہد. جی پیارے بچوں, آپ اب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کہانی کیسی ہو سکتی ہے اور نہ جانے یہ کیسی ہونے والی ہے. تو چلیے جی اپنی کہانی کو شروع کرتے ہیں. جیسے کہ آپ سب بچے جانتے ہیں کہ اپنے ماں باپ جو ہیں آپ ان کے ساتھ باہر گھومنے پھرنے جاتے ہیں اور آؤٹنگ کے لیے جاتے ہیں, بہت زیادہ موج مستی کرتے ہیں. آپ میں سے بہت سارے بچے ایسے بھی ہوں گے جو ہمیشہ سے وہی کام کرتے ہیں جو ان کے ماما پاپا ان کو کہتے ہیں, جبکہ کچھ بچے ایسے بھی شرارتی ہوں گے جو کہ ایسا کام کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں جس میں ماں باپ ان کو منع کرتے ہیں. تو آج کی جو ہماری کہانی ہے اس میں ایک بچہ ہے جس کا نام ہے عامر. عامر اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کا بہت ہی زیادہ لاڈلا سا بچہ ہے اور ماں باپ اس سے بہت پیار کرتے ہیں, دادا دادی اس سے بہت پیار کرتے ہیں اور وہ تو سب کی آنکھوں کا تارا ہے. جو بھی کہتا ہے جیسے کہتا ہے گھر والے ہمیشہ ویسے ہی کرتے ہیں. اب ایک بار کیا ہوا کہ عامر اپنے ماما پاپا کے ساتھ باغ میں گھومنے چلا گیا. وہ ہمیشہ ہی گھومنے جایا کرتا تھا کیونکہ اس کو صبح کی سیر کرنا, باغ میں جانا بہت ہی پسند تھا. اس کے ماں باپ اس کو بتاتے تھے کہ صبح کی سیر کے بہت فائدے ہوتے ہیں. ایک دن کیا ہوا, عامر اپنے ماں باپ کے ساتھ باغ میں سیر کو گیا جیسے کہ عموماً وہ ہمیشہ جاتا تھا. اور وہ باغ میں دیکھ رہا تھا کہ مختلف قسم کے پھول ہیں, پودے ہیں, درخت ہیں اور اسے وہ سارا موسم بہت اچھا لگ رہا تھا. وہ ہر ایک پھول کے سامنے جاتا, اس کو غور سے دیکھتا, اس کی خوشبو کو سونگتا اور پھر اس پھول کو بڑے پیار سے آرام سے ہاتھ لگا کر محسوس کرتا. اور وہ تمام پھولوں کے پاس جا کر بار بار یہی عمل دہرا رہا تھا اور ان میں فرق محسوس کرنے کی کوشش کر رہا تھا. ظاہری سی بات ہے جب آپ باغ میں جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو کتنی قسم کے پھول نظر آتے ہیں, ہر پھول دوسرے پھول سے مختلف ہوتا ہے, ان کی اقسام مختلف ہوتی ہیں. عامر بھی اسی طرح باغ میں معائنہ کرنے میں مصروف رہا اور اسی دوران اس کی امی نے اسے آواز دی اور اپنے پاس بلا کر کہا کہ بیٹا کھیلنے کے دوران کہیں دور مت چلے جانا, ہمارے پاس ہی رہنا. عامر نے کہا جی امی میں آپ کی فرما برداری کروں گا اور میں کہیں بھی دور نہیں جاؤں گا. وہ باغ میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا, کھیلنے لگا اور کچھ دیر کے بعد اپنی امی کے پاس آ کر بولا امی کیا میں جھولا جھول لوں؟ تو عامر کی امی نے بولا ہاں بیٹا ٹھیک ہے تم جاؤ اور جھولے لے لو لیکن ذرا احتیاط سے. امی نے اجازت تو دے دی لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ نصیحت بھی کی کہ کبھی بھی اگر کوئی تمہیں کہتا ہے کہ میری بات سنو, تمہیں تمہارے ماما پاپا یا امی ابو بلا رہے ہیں ہمارے ساتھ چلو اور تم اس انسان کو نہیں جانتے تو اس کے ساتھ مت جانا اور کھیلتے کھیلتے اتنا دور بھی مت چلے جانا کہ پارک سے ہی باہر چلے جاؤ. عامر نے وعدہ کر لیا اور چلا گیا. اتنے میں جھولا جھولتے ہوئے اس کی نظر پڑی سامنے کیاری پر, کیونکہ اسے پھول تو بہت زیادہ پسند تھے نا. تو اب کیاری کے پاس چلا گیا, وہاں پہ اس نے ایک پھول دیکھا جو باقی پھولوں کی نسبت بہت ہی زیادہ منفرد تھا. اور وہ جب اس پھول کے پاس گیا اور دیکھا کہ اس پھول کے ساتھ اور بھی بہت زیادہ لال, پیلے اور مختلف رنگ کے پھول تھے, اسے ان رنگوں کا امتزاج بہت اچھا لگا. اتنے میں اس نے محسوس کیا کہ ایک اجنبی سا شخص اس کے برابر آ کے کھڑا ہوا اور وہ ایک ایسی جگہ پہ اس ٹائم کھڑا تھا جو درختوں سے گھری ہوئی تھی, یعنی کہ اس کے آس پاس بہت زیادہ درخت تھے اور نہ عامر اپنے والدین کو دیکھ پا رہا تھا اور نہ ہی وہاں سے اس کے ماں باپ اس کو دیکھ سکتے تھے. اب اس اجنبی انسان نے عامر سے بولا بیٹا آپ کو پھول بہت پسند ہے نا؟ عامر ایک دم حیران ہوا اور پریشانی کے عالم میں اس آدمی کی طرف دیکھا اور سوچنے لگا کہ اس کو کیسے پتا کہ مجھے پھول بہت زیادہ پسند ہیں. اور جیسے ہی عامر وہاں سے جانے لگا اس شخص نے کہا نہیں نہیں رکو بیٹا, آؤ میں آپ کو بہت زیادہ اچھے اچھے اور اس سے بھی زیادہ خوبصورت پھول دکھاتا ہوں. आमिर क्योंकि उसे फूल बहुत ज्यादा पसंद थे, यानी कि जुनून की हद तक उसे फूलों से लगाव था, और वो अपनी अम्मी की नसीहत को भूल गया और उस अजनबी इंसान के साथ चलने लगा। जब उस इंसान के साथ चलते जा रहा था तो फिर अचानक से उसके जहन में ये ख्याल आया कि मेरी तो अम्मी ने मुझे मना किया था कि किसी भी अजनबी इंसान के साथ कहीं मत जाना, और जैसे ही वो पीछे मुड़ा ये कहने के लिए उस आदमी को कि मैं तो तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला, तो इसी असना में उस आदमी ने आमिर के मुंह पर कपड़ा रख दिया और उसे बेहोश कर दिया, और फिर उस शख्स ने आमिर को उठाया और तेज रफ्तारी से बाहर की जानिब बढ़ने लगा। अब जब वो बाहर की जानिब जा रहा था तो ऐसा हुआ कि अचानक से आमिर के वालिद की नजर उस शख्स पर पड़ी और उन्होंने आमिर को भी पहचान लिया, और जैसे ही वो उसके पीछे भागने लगे लेकिन वो आदमी आमिर को लेकर अपनी गाड़ी में फरार हो गया। आमिर के वालिद ने फौरन से समझदारी का मुजाहरा किया और उस गाड़ी का नंबर नोट कर लिया। उन्होंने अपनी गाड़ी तक पहुंचने से पहले ही पुलिस स्टेशन फोन कर दिया और पुलिस को इत्तला कर दी कि मेरा बेटा इस तरह से किसी ने अगवा कर लिया है, और जिस आदमी ने अगवा किया है उसकी गाड़ी का ये नंबर है। और इसी असना में अब सारे पुलिस वाले भी निकल पड़े चेक करने के लिए कि वो गाड़ी कहां पे है और किस तरह से अब उसको पकड़ा जाए। फिर क्या हुआ कि गाड़ी जब पुलिस चेक पोस्ट पर रुकी तो पुलिस ने देखा कि ये तो सेम वही नंबर है, वही गाड़ी है, और ये तो अच्छा था कि आमिर के वालिद ने पुलिस को पहले ही आगाह कर दिया था, क्योंकि वो आदमी जिसने आमिर को अगवा किया था वो पुलिस को यही बताना चाह रहा था, वो यही जाहिर करवा रहा था कि वही आमिर का वालिद है, जबकि ऐसा नहीं था। और फिर आखिर आमिर की वालिद की समझदारी और पुलिस की बरवक्त कार्रवाई की वजह से मुलजिम पकड़ा भी गया और आमिर महफूज भी रहा, और इस वाक्य से उस मुजरिम को सजा भी मिल गई। लेकिन इस वाक्य से आमिर ने यह सबक सीख लिया कि अपने वालदैन की फरमाबरदारी में ही हमारी बेहतरी होती है। बिल्कुल प्यारे बच्चों, अगर आप भी अपने वालदैन की बातों पर अमल नहीं करते तो इस कहानी से आपको ये सीख लेना चाहिए कि जो बड़े कहते हैं वो हमेशा सही ही होता है, और आप भी अपने वालदैन की बात को माना करें। प्यारे बच्चों, कहानी तो आपने सुन ली, चलिए अब बढ़ते हैं आज की मालूमात की तरफ, जिसका कि आपको इंतजार भी होगा। आज हम बात करेंगे डेड सी की। आप में से कुछ बच्चों ने शायद नाम भी इसका सुना होगा, लेकिन क्या आपको ये पता है कि इसको उर्दू में हम क्या कहते हैं? उर्दू में इसे बहीरा मुर्दार कहते हैं, और इसकी क्या खसूसियात हैं या ये कैसा होता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। बहीरा मुर्दार एक झील का नाम है जिसमें पानी बहुत ज्यादा होता है और ये पानी बहुत खारा होता है। पुरानी किताबों में इसके कई नाम भी मिलते हैं, कहीं इसे बहरे नमक कहा गया है और कहीं इसे बहरे मैदान से पुकारा गया है, और कुछ लोग तो इसे बहरे मशरक भी कहते रहते हैं, और अंग्रेजी में इसे डेड सी या बहीरा मुर्दार कहा जाता है, और अरबी में ये बहीरा लूत कहलाता है। ये समंदर एक झील की शक्ल का है और उर्दन में वाक्या है। इसकी लंबाई 46 मील है और इसकी सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि ये सतह समंदर से 13,000 फीट नीचे है। इसका पानी इतना ज्यादा नमकीन है कि इसमें कोई मछली जिंदा नहीं रह सकती, इसीलिए इसको मुर्दा समंदर कहा जाता है। बहीरा मुर्दार का पानी ज्यादा नमकीन होने की वजह से तैराकी के लिए बहुत मौजू है, यानी इसमें स्विमिंग जब हम करते हैं तो इससे कोई नुकसान नहीं हो सकता, इसमें डूबने का कोई अंदेशा ही नहीं है, और इसकी सतह पर एक बच्चा भी आसानी से तैर सकता है। अगर आप चाहें तो आप इसकी सतह पर लेटकर अखबार भी पढ़ सकते हैं। बहीरा मुर्दार अगरचे मुर्दा है, और ये तो सच है कि किसी भी मुर्दे से कभी फायदा की तवक्को नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी ये जो झील है या ये जो समंदर जैसी झील है ये बहुत बड़ी आमदनी का एक जरिया है। यहां से पोटाश जो है वो हासिल किया जाता है, जिसकी काफी मांग भी है। प्यारे बच्चों, आपको एक और मालूमात देती हूँ, लेकिन उससे पहले क्यों ना आपकी जहानत का थोड़ा सा इम्तहान ले लिया जाए। जैसे कि पहले हम आपकी जहानत का इम्तहान लेते थे एक पहेली के जरिए, तो आज मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए थोड़ा सा इस पैटर्न को तब्दील कर लिया जाए। तो आज आपके लिए एक सवाल लेकर आई हूँ, और सवाल बहुत आसान सा है। तो सवाल ये है कि ऐसा कौन सा जानवर है जो 6 महीने सोता है और 6 महीने जागता है? तो आप इसका जवाब तलाश कीजिए। और मैं इसके साथ साथ आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले इंसान को पना कहाँ मिली थी। ये तो हम सब जानते हैं कि जब इंसान इस दुनिया में आया तो तब इसे घर बनाने नहीं आते थे, और इसने जंगली जानवरों से बचने के लिए और मौसमी सूरत हाल से बचने के लिए, यानी धूप से, बारिश से, तूफानों से बचने के लिए गारों में पना ली। ये बहुत पुराने जमाने की बात है। गारों को कुदरत खुद बनाती है। हाँ जी बिल्कुल, आपको ये सुन के शायद हैरानगी होगी, ये ऐसा ही है। ये एक ऐसा तरीका होता है कि किसी ऊंची चट्टान से पानी टपकता रहता है और इस पानी में जो तेजाब होता है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की जमीन को काट कर गार बना देता है। और दूसरा तरीका ये होता है कि समंदर की लहरें लगातार साहिल से टकराती हैं और साहिल के नजदीक जो चट्टान होती है उसे काट कर गार बना देती हैं। गारों में इंसान ने काफी मुद्दत तक जिंदगी गुजारी। इस जमाने को पत्थर का जमाना भी कहा जाता है। इस जमाने के लोग भी अपनी अकल से काम लेते थे और फुर्सत के वक्त में, यानी जब वो फारिग होते थे, तब वो अपनी गार की दीवारों पर तस्वीरें बनाते थे। और ये तस्वीरें उन जानवरों की होती थी जिनका शिकार करके वो खुराक का इंतजाम करते थे। और यूरोप में 100 से ज्यादा गारों का पता लगाया गया है जहां पत्थर के जमाने के इंसान जो हैं वो रहते थे। इन गारों में ऐसी तस्वीरें आज भी मौजूद हैं जो उस जमाने के जानवरों का पता देती हैं। उनमें से कुछ जानवर ऐसे हैं जो नापैद हो चुके हैं और कुछ ऐसे हैं जो आज भी जिंदा हैं। बास तस्वीरें नोकीले पत्थरों से बनाई गई हैं और उनमें रंग भी भरे गए हैं। बास तस्वीरों में शिकार का पूरा मंजर दिखाया गया है और इस वक्त की जिंदगी का नक्शा भी खींचा गया है। अगर आप में से जब बच्चा कोई बड़ा हो जाए, उसको यूरोप जाने का मौका मिले, या अभी ही कोई बच्चा इतना लकी हो जाए और उसको यूरोप में जाने का मौका मिले, तो आप जरूर इन गारों का विजिट कीजिएगा जहां पे आज के जमाने की जिंदगी का नक्शा जो है वो उस टाइम पे बना दिया गया था। आप में से परिंदे किस किस बच्चे को पसंद है? यकीनन सभी बच्चों को पसंद होते हैं, लेकिन हर परिंदे की एक खास सी आवाज होती है। लेकिन वो आवाज कैसी होती है? जाहिर सी बात है, अपनी जुबान से या अपनी चोंच से उनकी जो एक आवाज होती है वो हमें सुनाई देती है। लेकिन आज आपको बताते हैं कि कोई एक ऐसा परिंदा भी है जो अपने परों से गुनगुनाने की आवाज पैदा करता है। हाँ जी, ये थोड़ा सा दिलचस्प सा है, तो आपको बता देती हूँ कि जनूबी और वस्ती अमेरिका के जंगलों में ऐसे परिंदे पाए जाते हैं जो अपने परों से गुनगुनाने की आवाज पैदा करते हैं। इनकी 500 से ज्यादा किस्में हैं। सबसे छोटी किस्म का परिंदा इतना छोटा है कि वो परों के बगैर शहद की मक्खी के बराबर होता है। इसका घोंसला अखरोट के बराबर होता है और अंडा मटर का एक छोटा सा दाना नजर आता है। ये दुनिया का सबसे छोटा परिंदा है। इसके पर बड़े खूबसूरत होते हैं और वो अपने परों से गुनगुनाने की जो आवाज पैदा करता है वो दिलकश होती है। और इस परिंदे की खुराक फूलों का रस है, पर आप ये नहीं कह सकते कि ये परिंदा जो है वो बटरफ्लाई यानी तितली है। कभी कभी छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को भी पकड़कर खा जाता है। ये ऐसा एक परिंदा है। वो एक फूल से उड़कर दूसरे फूल की तरफ जाता है और फिर उनका रस जो है वो चूसता है। उसे फूलों का मुआयना करने के लिए कुछ देर तक हवा में भी ठहरना पड़ता है और इस वक्त वो अपने परों को जल्दी जल्दी चलाता है। इस जल्दी का अंदाजा आप यूं लगाएं कि इसके पर एक सेकंड में 80 दफा फड़फड़ाते हैं और यही वजह है कि इसके परों से गुनगुनाने की आवाज निकलती है। इस परिंदे को सिंगिंग बर्ड कहते हैं। अभी हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उस सवाल का जवाब ढूंढ चुके होंगे जो मैंने इनसे पूछा था। तो जो अभी वक्त है कि उस सवाल का जवाब जो है जिन बच्चों ने ढूंढ लिया है उनके लिए तो एक खुशी की बात होगी, लेकिन कुछ बच्चे जो अभी भी थोड़े से कंफ्यूज हैं कि पता नहीं क्या है, ऐसा कौन सा जानवर है जो 6 महीने सोता है और 6 महीने जागता है, वो कौन सा है? तो चले जी, मैं आपको बताती हूँ, वो मेंढक है। गर्मी के अब दिन आ गए हैं और आप देखेंगे कि वो आपके घरों में भी नजर आएंगे और पानी में, खासतौर पर क्योंकि गर्मी होती है तो वो पानी में भी जो आसपास के जोहड़ होते हैं वहां पे भी आपको नजर आएंगे। तो इसका जवाब मेंढक है, यानी मेंढक एक ऐसा जानवर है जो 6 महीने सोता है और 6 महीने जागता है। सर्दियों के दिनों में ये सोया होता है और गर्मी के दिनों में ये जागता है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। इसमें से जो चीज आपने सीखी, जो चीज आपको अच्छी लगी, उसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अभी प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। आप सुनिए ये नज्म और अपनी मेजबान सना जॉर्ज को इजाजत दीजिए।
बच्चा खाता था खिचड़ी, पीता था पानी। बुलबुल का बच्चा गाता था गाने मेरे सिरहाने। बुलबुल का बच्चा खाता था खिचड़ी, पीता था पानी। बुलबुल का बच्चा गाता था गाने मेरे सिरहाने। एक दिन अकेला बैठा हुआ था, मैंने उड़ाया वापस आया। एक दिन अकेला बैठा हुआ था, मैंने उड़ाया वापस आया। बुलबुल का बच्चा एक दिन अकेला बैठा हुआ था, मैंने उड़ाया वापस आया। बुलबुल का बच्चा, बुलबुल का बच्चा खाता था खिचड़ी, पीता था पानी। बुलबुल का बच्चा गाता था गाने मेरे सिरहाने। बच्चा खाता था खिचड़ी, पीता था पानी। बुलबुल का बच्चा गाता था गाने मेरे सिरहाने। बुलबुल का बच्चा खाता था खिचड़ी, पीता था पानी। बुलबुल का बच्चा गाता था गाने मेरे सिरहाने। एक दिन अकेला बैठा हुआ था, मैंने उड़ाया वापस लाया। एक दिन अकेला बैठा हुआ था, मैंने उड़ाया वापस लाया। बुलबुल का बच्चा एक दिन अकेला बैठा हुआ था, मैंने उड़ाया वापस लाया। बुलबुल का बच्चा, बुलबुल का बच्चा खाता था खिचड़ी, पीता था पानी।
उठ